देखिए जिस समय इस देह की मौत होती है उस समय ऐसा वर्णन आता है कि इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं, अर्थात इस जीव को यानी मुझको संसार का और शरीर का बोध नहीं रहता, परंतु मन एक्टिव रहता है। इसीलिए उस समय इस जीव को जो कुछ भी मन में संस्कार उसके बने हुए हैं, जो कुछ भी डिजायर्स बनी हुई हैं, उस समय इसको जैसे स्वप्न अवस्था होती है, स्वप्न में हमको दिखाई पड़ता है, उसी समय जी को भी अनुभव होता है। लेकिन उसके पश्चात ये मन जो है वो प्राण में विलय हो जाता है, उस समय फिर जी को कोई होश नहीं रहता। यद्यपि देह के अंदर प्राण जिसको हम प्राणापान कहते हैं या श्वास केवल कह लेते हैं वो तब भी चल रही होती है, परंतु जीव का जो होश है, जीव की जो कॉन्शियसनेस है वो चली जाती है। अर्थात उस जीव को इस समय जैसे प्राण चल रहे हैं, मुझे होश है इस प्राण का, मैं आंख बंद करके देखूं तो प्राण मेरे आ रहे हैं जा रहे हैं, परंतु जिसकी मौत होती है और ये मन जब प्राण में लीन होता है वो अवस्था होती है, उस समय ना कोई संकल्प जीव के अंदर रहता है ना कोई होश रहता है, तो जीव उस समय अपने आप में एक तरह से ये कहिए कि इस देह के प्रति वो मौत को प्राप्त हो गया, देह के प्रति वो अनकॉन्शियस हो गए। लेकिन प्राण जो है ये फिर ये महाप्राण में लीन हो जाता है, जिसको अध्यात्म में कुंडलिनी भी कहा जाता है, जिसको काली भी कहते हैं। तो इस देह की जो जीवन शक्ति है जिसके आधार पर ये शरीर चलता है वो महाप्राण है, और वो जीवन शक्ति है जिसके आधार पर ये शरीर चलता है। तो ये जो प्राण है ये इस फिर महाप्राण के अंदर लीन हो जाता है। तो महाप्राण की उपस्थिति इस शरीर के अंदर उस समय देह की गर्मी के रूप में अनुभव होती है, और देह की गर्मी में यदि आपको किसी भी जिसकी डेथ हो रही हो आप देखें तो पैर से लेके धीरे 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 उसकी जो हीट जो है वो खत्म होना शुरू होती है, फिर वो हीट नाभि तक आएगी, फिर गले तक आएगी, फिर ये मस्तक पे वो हीट रहेगी, बाकी पूरी बॉडी कूल हो जाएगी। तो ये हीट उस महाप्राण की है। उसके पश्चात जब ये मस्तक भी आपका ठंडा हो जाए तो वो फिर महाप्राण जो है इस देह का फिर त्याग कर दिया, अर्थात ये जो है कंप्लीट डेड हो गया। जब तक आके मस्तक में भी हल्की भी गर्मी मौजूद है वो प्राण आपका वापस लौट सकता है कभी। इसलिए पुराने जो वैद्य होते थे वो दिल की धड़कन नहीं देखते थे, दिल की धड़कन बंद होने के बाद भी आपने कई केसेस सुने होंगे कि जो डेड बॉडी है वो कई बार खड़ी हो जाती है, उसमें हरकत आ जाती है। उसका कारण यह है कि महाप्राण ने इस शरीर का त्याग नहीं किया, क्योंकि सब कुछ आपका महाप्राण के अंदर सुरक्षित है, आपके मन उसमें सुरक्षित है, आपकी इंद्रियां उसमें सुरक्षित हैं, तो आपका जो ये प्राण है ये भी उसके अंदर सुरक्षित है, इसको आप श्वास कहते हैं। तो इसीलिए उस महाप्राण के अंदर ये जीव पूरी तरह से सुरक्षित है, या यूं कहिए कि ईश्वर के गोदी में ही ये जीव बैठा हुआ है, उसको सरल शब्द में आप समझना होता है। तो ये जो महाप्राण है जब इस देह का त्याग करता है, तो यही महाप्राण नई देह का निर्माण भी करता है, अर्थात नई देह के अंदर ये महाप्राण इस शरीर में नीचे आता है। और क्यों आता है ये, उसका कारण मन है। मन के संस्कार जब तक बने हुए हैं तब तक ये महाप्राण देह के अंदर एक्टिव होगा ही होगा। इसलिए प्रश्न पूछने में एक प्रश्न आता है कि ये महाप्राण अर्थात कुंडलनी ये देह के अंदर क्यों प्रवेश करती है, कैसे प्रवेश करती है। तो कहते हैं मनोकृत, मन के कारण ये कुंडलनी देह के अंदर प्रवेश करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस देह का निर्माण मन ही करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे संस्कार आपने बनाए हैं, जो स्वभाव आपने बनाया है, जो कर्मफल इस देह के द्वारा आपने संसार में भोगने हैं, सुख के रूप में दुख के रूप में, वो सारे के सारे कर्मफल के अनुसार, कर्म के अनुसार ये देह आपके तैयार की जाएगी। और इसके चारों तरफ के लोग भी आपके लिए तैयार किए जाएंगे, संसार भी आपके लिए तैयार किया जाएगा। ये पूरी की पूरी जो संसारिक रचना है ये आपके मन की कृति है। तो उपनिषद के अनुसार कारणकर्ता और कोई नहीं है, कारणकर्ता मैं स्वयं। इसीलिए महाजी कहते हैं कि देह करके संसार, देह और संसार में कोई भेद नहीं। तो ये संसार देह करके है, इसका मतलब हुआ कि देह और संसार की उत्पत्ति एक साथ होती है और दोनों ही एक साथ, जैसे मन लीन होता है तो दोनों ही एक साथ लीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे स्वप्न की रचना होती है, तो जब बनता है तो देह और संसार एक साथ बनती है स्वप्न में, और जब स्वप्न लीन होता है, गहरी निद्रा आती है उस समय, तो देह संसार एक साथ लीन होते हैं। तो इस समय आपसे भी पूछे स्वप्न में वो दुनिया थी, वो कौन सी दुनिया में पैदा हुए थे, तो आप कभी नहीं कहोगे कि जो दुनिया हमें आंख से दिखाई पड़ रही है इस दुनिया में पैदा हुई, इस दुनिया में ये देह पैदा हुई। लेकिन उस दुनिया में जिसको हम स्वप्न की दुनिया कह रहे हैं, उसमें जो देह काम कर रही थी वो ये देह नहीं थी मेरी, तो इस समय मेरे पास अच्छी तरह मुझे पता। तो उस देह ने जो काम किया था, उसी देह के साथ जो संसार था, वो देह करके संसार प्रकट हुआ था और देह करके ही संसार लोप हो गया। उसी प्रकार मृत्यु के समय ये देह ये संसार भी मन के अंदर ही लोप हो जाएगा, मन महाप्राण में लोप हो जाएगा, तो केवल वहां पर ईश्वर सत्ता बनी रहेगी। तो इसीलिए ये जो योग मार्ग है, जो योग विद्या है, आपको इसीलिए सिखाई जाती है कि आपका होश बना रहे परंतु फिर भी आप मृत्यु से ऊपर उठ जाए। तो जो योगी है उसका यह अनुभव कहता है कि जिस समय उसका मन प्राण के अंदर लीन होता है, जैसा कि आपका भी मृत्यु काल में होता है, लेकिन आपका होश खत्म हो जाता है। योगी का भी मन प्राण के अंदर लीन होता है परंतु उसको प्राण का होश बना रहता है। उसके अंदर ये, क्योंकि मन लीन हो चुका है, अब वहां विचार नहीं उठ सकता, अनुभव तो है उसका लेकिन विचार वहां कोई नहीं होगा। उसके अंदर ये विचार भी नहीं उठ सकता कि मैं प्राण का अनुभव कर रहा हूं, वो कंप्लीट इनोसेंस की हालत है, कंप्लीट शांति की हालत है। तो ऐसे योगी का ये जो प्राण है, इतनी शांति जब होती है तो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि प्राण केवल आप समझिए एक तरह से वाइब्रेट करने लगता है। इसके जो अंदर जाने की बाहर आने की लंबी जो गति थी जिसको वाणी में आता है बारह सोलह की गति, वो गति पहले सम होती है, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो श्वास ऑलमोस्ट वाइब्रेट करने लगता है। उस हालत में जो स्थिति होती है योगी की, उसको समाधि कहते हैं। जहां नहा इंद्रियां हैं, ना जहां मन है, ना जहां प्राण है, ना जहां देह है, ना जहां संसार है, कोई अनुभव नहीं है, परंतु योगी उस आनंद का अनुभव कर रहा है जिसको ईश्वर का आनंद कहते हैं या समाधि का आनंद। उस हालत में वो 10 मिनट भी रह सकता है, उस हालत में वो 2 दिन भी रह सकता है, ये भी डिपेंड करता है कि समाधि कितनी गहरी है, क्योंकि वहां टाइम का होश ही नहीं है उसमें। तो देश काल वहां है ही नहीं, तो इसलिए समय की कोई सीमा ही नहीं वहां पर। तो जब भी नेचुरल वे में समाधि जब उसकी टूटती है, तब वही प्रक्रिया वापस उसकी लौटती है। जिस महाप्राण में उसका वो प्राण लीन हुआ था, प्राण वापस आता है, प्राण से मन वापस आता है, मन से इंद्रियां वापस आती हैं, इंद्रियों से देह और संसार का अनुभव वापस आता है। इसीलिए उस योगी को हर चीज का बोध है, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही, जैसा संत विलास में लिखा है वैसा ही उसको बोध है। इसलिए उसका जो ये ज्ञान है वो अनुभवी ज्ञान है, इसीलिए उसको हम ज्ञानी कहते हैं। वो शास्त्र पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं है, वो अनुभवी ज्ञानी है। हो सकता है उसने स्कूल में एडमिशन ही कभी ना लिया हो, कुछ भी ना जानता हो, लेकिन हर चीज वो जानता है, क्योंकि उसका अनुभवी ज्ञान है। तो इसीलिए जिसने उस मौत को जीत लिया, जीतेगी वो महाप्राण में जो प्रवेश कर गया, वो मौत के बाद क्यों प्रवेश करेगा, सब कुछ उसने खुद ही उस मूल सत्ता के अंदर प्रवेश कर गया। तो इसीलिए महाजी कहते हैं प्रेमी जो समता की हालत है, अर्थात ये वो स्थिति है जहां ये भी नहीं है कि समाधि की हालत में और जागृत हालत में कोई अंतर हो, तो ये वो हालत है कि जागते हुए भी वो समाधि में है और समाधि के अंदर समाधि में है। इसलिए ये जो स्थिति होती है इसी को ही ब्रह्म स्थिति कहते हैं, इसी को ही समता स्थिति कहते हैं, इसी को ही निर्वाण स्थिति कहते हैं और इसी को ही मोक्ष स्थिति कहते हैं। उसमें शरीर उसका कभी भी कहीं भी गिर पड़े उसका उससे कोई वास्ता नहीं होता। महर्षि रमण से एक बार पूछा गया था, महर्षि सत्पुरुष को देह के बारे में कैसा बोध होता है, तो उन्होंने कहा जैसे कोई पथिक जा रहा हो, उसके कंधे पे तौलिया पड़ा हो, कहीं उसका तौलिया गिर जाए, उसको बोध ही नहीं होता तौलिया मेरा कहां गिर गया। उसी प्रकार उसकी देह कभी भी कहीं भी गिर जाए उसका से कोई संबंध नहीं। तो जब तक वो स्थिति ना जाए, इस देह की मुझको आवश्यकता है और ईश्वर ने इसी कार्य के लिए ये देह मुझको दी है, ये केवल इक्विपमेंट है, लेकिन संसारियों के बीच में मैं पल के संसारियों की शिक्षा ग्रहण करके उनके कार्यकलाप देख देख कर मैंने जो स्वभाव बनाया है, जो आदतें बनाई हैं, जो मूल्य मैं उन चीजों को देता हूं, तो इसी बात से देता हूं कि मुझको अपने बारे में ABCD भी नहीं पता, मैं अपने आप को केवल देह समझता हूं। तो सबसे निचली चीज है, हम जानते हैं कि देह का महत्व इंद्रियों के कारण है, ये हम सब जानते हैं। आप में से किसी से भी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों का रस यदि छीन लिया जाए, आपसे कहा जाए कान से आप सुन नहीं सकते, आंख से देख नहीं सकते, त्वचा से सर्दी गर्मी सख्त मुलायम का एहसास नहीं कर सकते, नासिका से सूंघ नहीं सकते, जीभ से स्वाद ग्रहण नहीं कर सकते। अब बताइए, आप इसी के लिए तो जीते हो। देख देख के आपका जब मोह फैलता है, दूसरे के शरीरों से प्रेम बढ़ता है, कान से तरह तरह के राग सुनते हो, बातें सुनते हो, नासिका से कितने तरह के आप जो है वो फ्लेवर्स ग्रहण करते हो, खुशबू ग्रहण करते हो, त्वचा से आप कितने कभी एयर कंडीशन में बैठते हो, कभी सर्दी गर्मी को अपने अनुसार बनाना चाहते हो, आरामदायक गद्दे चाहिए, जो कुछ चाहिए सख्त मुलायम, वो भी त्वचा का एहसास है। तो सारा स्पर्श का आनंद जो है वो त्वचा का ही है। और खाने का भी के लिए तो हमारी शायद आधी जिंदगी बीतती होगी, खाने का शौक सभी को होता है। तो जीव की रचना कितने तरह के स्वाद, कितने तरह की फैलाव संसार में ये पैदा करती है, आप सब जानते हैं। तो पांच ज्ञानेंद्रियों के भोग ही आपको संसार से जोड़ते हैं और आपके मन के संसारों का निर्माण करते हैं। तो आपके अंदर प्राण मौजूद है, देह के अंदर जान भी मौजूद है, ये पांच ज्ञानेंद्रियों का रस यदि आपसे छीन लिया जाए तो आप इस संसार में जीना चाहोगे? विचार करके देखो।
नहीं सर,
कोई जीना नहीं चाहेगा। तो सत्पुरुष कहते हैं कि तुझे होश ही नहीं है इस बात का कि इंद्रियों के कारण देह का महत्व है। ये तो देह क्या चीज है, कुछ भी नहीं। और तुझे इंद्रियां भी समझ में नहीं आ रही है, तुझे देह समझ में आ रही है, मैं देह हूं, कहां आ गया तू? मैं देह हूं ये मेरी हालत है, इसीलिए इसको जड़ बुद्धि जीव कहा जाता है। जो अपने आप को देह समझता है उसको अध्यात्म में जड़ बुद्धि जीव, वो जीव जिसकी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है कि उसको अपने बारे में कोई होश ही नहीं। इसी को महाराज जी ने एक शब्द और यूज किया वाणी में भी और समता विलास में भी, मदहोश बुद्धि, मदहोश जीव। जैसे कोई मनुष्य शराब पी ले, इतनी पी ले कि उसको देह का होश ही ना रहे, तो वो मदहोश हो गया। तो मुझको अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रहा, कोई बोध ही नहीं है, मैं ईश्वर हूं ये तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं जीव हूं ये भी होश नहीं, इसीलिए देह का अहंकार ही बनता हूं। जो भी देह का अहंकार करता है इसीलिए तो करता है वो, जो होश में होगा देह का अहंकार क्यों करेगा? देह को अहंकार करनी चाहिए, और उसका अहंकार का आधार यही होता है कि मैं देह हूं। आप कभी खड़े होकर विचार कर लेना, आपके अंदर जो अहंकार आ रहा है, चाहे अपने अच्छे काम करते हो उसका अहंकार आ रहा है, अच्छी बातें करते हो उसका अहंकार आ रहा है, अच्छा पैसा आपके पास है उसका अहंकार आ रहा है, जो भी अहंकार का स्रोत है आपके, आप कभी रुककर घर पर बैठ कर सोचना किसी ने कि मेरे अंदर ये अहंकार आता है ये क्यों आता है, इसका आधार क्या है? तो समता विलास के आधार पर ही सोचोगे तो आपको यही आएगा कि मैं अपने आप को देह करके जीता हूं, इसलिए यह अहंकार पैदा होता है। तो मैं जड़ बुद्धि जीव हूं, कहां विकास हुआ मेरा? होश में नहीं। इसीलिए जब आप हो गए ये सब चीजें आपके सामने होगी, देह भी होगी, प्राण भी होगा, मन भी होगा, इंद्रियां भी होंगी, संसार भी होगा, आप हो गए तो ये सब चीज होगी। इसीलिए जीव समाधि के बाद सहज समाधि की स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात वहां का मतलब यह है कि जिसको हम ब्रह्म कह रहे थे, जिसको हम जीवन सत्ता कह रहे थे, तो जीव उस सत्ता में लीन हो जाता है, लीन होने का मतलब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो उसका वास्तव में निज रूप है वो उसको प्राप्त होता है। निज रूप में ना संसार है, ना देह है, कुछ भी नहीं, जो है वो मैं ही हूं, या जो है वो जीवन सत्ता ही। इसलिए जितने भी वैदिक काल से लेके या जब से धरती बनी है जितने भी सत्पुरुष हुए उनको कोई वहम नहीं रहा। महामंत्री कह रहा है अद्वैत पुरखा, अद्वैत पुरुष है वो। हम तो अद्वैत पुरुष ईश्वर को कहते हैं ना, या गुरु सत्ता को कहते हैं, कभी ये नहीं सोचा यदि वो अद्वैत पुरुष है तो दूसरा वहां कोई होगा क्या? यदि यहां ईश्वर भी है मैं भी हूं तो वो द्वैत पुरुष हुआ या अद्वैत पुरुष हुआ? जो द्वैत होगा तो वहां मन के संकल्प के कारण होगा, तो वहां मन भी होगा, मन होगा तो देह भी होगी, देह होगा तो संसार भी होगी, अद्वैत पुरुष कैसे हो सकता है? इसलिए पुरुष का एक अर्थ यह भी होता है कि जो देह और संसार में शयन कर रहा है, प्रेजेंट है लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है। इसलिए उसको सत्ता करके कहा। लेकिन हम जहां खड़े हैं हमारा जो अनुभव है तो इसीलिए वो सत्ता गुरु रूप में प्रकट होकर हमारा मार्गदर्शन करती है, तो हमारे लिए द्वैत सत्य है। लेकिन हमसे ये कहा यह जाता है कि ये जो संसार है देह करके, या देह और संसार तेरे साथ जो मिला हुआ है, लोग तुझको मिले हुए हैं, तूने ये सीखना ही सीखना है कि ये सब तेरे दुख का कारण है, ये सब कुछ तेरी मौत का कारण है, ये तुझको मौत के दर्शन कराएगा। गुरु तो तुझको ब्रह्म के दर्शन कराएगा जहां मौत नहीं है, और ये संसार तुझको मौत के दर्शन कराएगा। जीते जी भी तड़पाएगा और मौत के बाद भी तड़पाएगा, क्योंकि फिर तेरी देह खड़ी हो जाएगी। इसलिए एक नाम इसका माया भी है। जो नाम रूपात्मक संसार नजर आता है उसको माया कहते हैं। नाम और रूप नजर आता है ना, तो नाम और रूप द्वैत में होता है, और ब्रह्म वहां है जहां द्वैत नहीं है, अर्थात ये अद्वैत स्थिति है, वो मेरी ही स्थिति है, और वो स्थिति इस देह के अंदर ही रहते रहते मुझको प्राप्त होती है। तो सारा संसार जैसे मेरे मन के मन से उदय होता है, ये मन जब शांत होता है तो ईश्वर भी संसार में इस शरीर में उदय होता है, ये सारा अनुभव अनुभवी ज्ञान है सब कुछ। इसलिए जो सत्य है उसके अनुसार मैं जीव, या जो नकल है नकली लोगों की, उनकी नकली लोगों की, भाई लोग जो कर रहे हैं सब नकली लोग ही, संसार भी नकली है, तभी तो वाणी कह रही है सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। इस संसार को महत्व को स्वप्न के समान दे रही है वाणी, बस इतना कह रही है। इसीलिए ये जितना भी बंधन है, आप पूरी अध्यात्म विद्या देख लीजिए, आप संत विलास को गहराई से पढ़िए और पूरी जिंदगी पढ़िए आप, कभी आपको कोई बात पकड़ेगी, कभी आपको कोई बात पकड़ेगी। यदि आप गंभीर हैं इस मार्ग पर चलने वाले, तो समय समय पर अलग अलग बातें आपके समझ में आती रहेंगी और आपके निश्चय को बदलती रहेंगी। इसीलिए इतना एनालिसिस महाराज जी ने पेश किया है संत विलास के रूप में। आज तक किसी शास्त्र की रचना इतनी डिटेल्ड नहीं हुई जितनी ये संत विलास की हुई, बड़ी मदद की है। सूत्र कोई नया नहीं है उसके अंदर, सूत्र वही है जो गीता के अंदर, सूत्र वही है जो उपनिषद के अंदर, लेकिन उसका जो विवरण है उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो सिस्टम है, वो बिल्कुल अपने आप में नई चीज है, इसलिए वो उसको नया शास्त्र कह सकते हैं। तो इसको धीरे धीरे जब आप सीखेंगे, पढ़ेंगे और उसके अनुसार सोचेंगे, तब आप खुद आपका मन संसार से हटने लगेगा। और जब तक आप सत्संग सुनते रहेंगे, विचार सुनते रहेंगे और खुद मनन करेंगे, आदत डालेंगे ही नहीं, तब विचार कितनी देर सुनते हैं आप? आधा घंटा, घंटा सुनोगे आप? उसके बाद 23 घंटे आपके संसार का विचार चलेगा, इसके निश्चय चलेंगे, तो निश्चय संसार का ही बना रहेगा, कभी भी नहीं होगा ईश्वर का निश्चय आपका। जब तक मनुष्य खुद सोचने की तैयारी नहीं करता, मनन करने की तैयारी नहीं करता, वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकता। 1000 बार आप निश्चय को सुन लीजिए, आपकी बुद्धि उसको एडॉप्ट नहीं करेगी। 1000 बार सुनने के बाद तभी करेगी जब आप पे रुकोगे। ये बात मैंने पढ़ी है, सुनी है, लेकिन जो मेरा निश्चय है और जो मेरा कर्म है, वो कोई दूसरा ही, किसी दूसरे को निश्चय को पकड़ के मैं कर्म कर रहा हूं और बड़े शौक से कर रहा हूं, और वो कर्म नहीं होता, बड़ी बेचैनी होती है मेरे अंदर। लेकिन ईश्वर का निश्चय टूटता है तो वो कहां बेचैनी होती है? इसका मतलब वो केवल बात है, उसने आपको पकड़ा नहीं है। जो इस स्वाध्याय और मनन प्रक्रिया से गुजरता है, उसको सत्पुरुष की बातें पकड़ने लगती हैं, फिर अपनी मूर्ता के बारे में सोचता रहता है कि कब से ये बात मैं सीख रहा हूं, आज तक मैंने सीखी नहीं, कैसा मूर्ख हूं। फिर दुनिया को नहीं देखता, वो केवल गुरु को देखता है, वो केवल गुरु की बात के बारे में सोचता है। इसलिए महाजी कहते हैं कि सत विचार करो, और सत विचार क्या होता है? जो सीधा ईश्वर से प्रकट हुआ है, यूं कह लें ऋषि या गुरु से प्रकट हुआ है, जो शास्त्र उसकी वाणी के द्वारा, उसकी कलम के द्वारा, वही सत विचार है, और कोई सत विचार नहीं। क्योंकि वह विचार आपको सत से जोड़ रहा है, सत का भेद खोल रहा है आपको, सत का निश्चय आपको दे रहा है, सत मार्ग में आपको लगा रहा है। इसलिए केवल वही सत विचार है, मैगजीन सत विचार नहीं है, याद रखिएगा। मैं भी कोई किताब दूं, वो सत विचार नहीं है, वो आपको सत विचार में सहायता तो कर सकता है, लेकिन वो सत विचार नहीं कराएगा। सत विचार वही है जो सत्पुरुष से डायरेक्ट प्रकट हुआ है, आपने उस सत विचार पर ही आपने दिमाग लगाना है, उस सत विचार को ही समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या निर्णय दे रहा है, क्या करने को कह रहा है, कैसा जीवन व्यतीत करने को कह रहा है, हर मामले में वो आपको गाइड करे। तो हर चीज की परिभाषा आपको समझ में खुद ही आने लगेगी, हर चीज की डिटेल्स भी आपकी खुद ही बन जाएंगी वो विचार जब आपको पकड़ेगा। तो इसीलिए महाराज ने जब कहा है कि कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटे सायंकाल सुनन लाजमी है, वो लाजमी क्यों है? सत विचार करोगे तो पता लगेगा। फिर आप में से एक भी ये बहाना नहीं बना सकता, क्या करूं मेरे पास काम बहुत है, इसलिए 2 घंटे तो मैं सिमेंट लिए निकाल ही नहीं सकता। मैं तो यही कहूंगा कम से कम 1 घंटा स्वाध्याय के लिए भी आपको चाहिए, चाहे उसका नाम आप सत्संग रख लो, चाहे आप उसका नाम स्वाध्याय रख लो, लेकिन सत विचार पर मनन करना कम से कम 1 घंटा आपको चाहिए। जन्म आपको बच्चे पालने के लिए नहीं मिला है, वो आपका सामाजिक या सांसारिक कर्तव्य है, वो आपका प्रारब्ध है, लेकिन उस काम के लिए जन्म नहीं मिला है। जन्म आपको मौत का इलाज करने के लिए मिला है, उस मंजिल पर, उस स्थिति पर पहुंचने के लिए मिला है जहां मौत खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जो शास्त्रों का प्राण विज्ञान है वो बड़ी गहरी चीज है। प्राण शब्द का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है, बहुत रेफरेंस में किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ वहां अलग होते हैं। तो मैंने इसलिए आपको ये खोला ताकि आपको पता लग जाए। प्राण शब्द हम कई जगह पढ़ेंगे लेकिन वहां उसके अर्थ हम देखना पड़ता है कि यहाँ किस अर्थ के सिलसिले में ये प्राण शब्द का इस्तेमाल किया गया। जो कॉमन प्राण है जो सभी जानते हैं, श्वास जब बाहर आती है तो देखते हैं कि आपका गर्म श्वास बाहर आती है, इसको प्राण कहते हैं। लेकिन इस प्राण शब्द का इस्तेमाल इस सारे विज्ञान को वर्णन करने में किया जाता है, इसके हर जगह अलग अलग अर्थ भी हैं। इसीलिए श्वास पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया, तो वही अर्थ वहां फिट बैठेगा। आपके अर्थ फिट नहीं बैठेंगे कि सबको मिला दोगे आप, आपने प्राण सीख लिया, ऐसे नहीं होगा।
प्राण जब शरीर से निकलता है तो जीव भी निकल जाता है उसी क्षण, यही तो एक्चुअल क्रिया है।